कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्ये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाल्मीकि गिरिसम्भूता रामसागर गामिने पुनाति भुवनं पुण्यं रामायणं महानदी चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैक अक्षरम् महापातक नाशनम् कूजन्तम् राम रामेति मधुरम् मधुराक्षरम् आरोह्य कविता शाखाम् वंदे वाल्मीकि कोकिलम् मनुज्वं मारुतुल्य वेगम् जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानर्युत्थ मुख्यम् श्रीरामदूतं सिरसे नमामि रामं रामानुजं सीतां भर्त भर्त अनुजं सुग्रीवं वायुसोनं च प्रणमामि पुनः पुनः। जय श्री राम। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय जिन्होंने सात दिन तक सुबह भागवत के सत्संग और सायंकाल को राम कथा का श्रवण वर्णन करने का आपको और हमको शुभ अवसर दिया। तो कल हमने किष्कंधा कांड को एक दृष्टि से पूरा ही किया था। सुग्रीव जी ने चारों दिशाओं में अपने वानर दलों को सीता की खोज के लिए रवाना करके एक महीने में लौटने का उनको आदेश दिया है। तीन दिशाओं के तो वानर वापस निराश होकर आए, लेकिन दक्षिण दिशा में जो अंगद के नेतृत्व में जामवत हनुमान और नल नील के साथ गए हुए जो थे, महीना पूरा हो गया प्यास में भटकते हुए हनुमान की सहायता से एक कंदरा के अंदर चले गए, जहां उनको जल मिला, फल फूल मिले और देखा तो एक बहुत तपस्विनी स्त्री वहां बैठी हुई है। तो हनुमान जी ने बहुत कुशलता से अपना परिचय देते हुए कि हम रामदूत हैं, तो उन्होंने कहा मेरा नाम स्वयं प्रभा है, मैं यहां तपस्या करती हूं, ये मैं दानव ने विशेष स्थान बनाया था मेरी सहेली के लिए, तो अप्सरा थी, अब वो यहां नहीं है, आप आए तो हो यहां, बोला हम प्यासे हैं तो फल फूल खा लो, लेकिन यहां से जाओगे कैसे वापस, ये तो मैं दानव की बहुत ही दिव्य गुफा है। हनुमान जी ने कहा राम जी के काम में हमको पहुंचना है, तो स्वयं प्रभा ने कहा ठीक है, आप जलपान कर लिया है तो आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर ली तो उस स्थान पे पहुंचे जहां समुन्द्र चारों ओर दिख रहा था और कुछ भी नहीं था, और यहां पहुंच के अंगद कहता महीना पूरा हो गया, अब यहां समुन्द्र सामने पड़ा है, क्या करेंगे, वापस जाएंगे तो सुग्रीव मार देगा, और यहां सीता का पता मिला नहीं है, अब तो यहीं अनशन करके बैठते हैं। तो इतनी देर में एक पंजा हाथ का बाहर निकला है और वहां से एक बहुत बड़ा पक्षी गीधराज कहता है अरे ब्रह्मा जी आज बड़ी कृपा की है, इतने सारे वानर ये बैठे हैं, मेरे को बहुत समय से कुछ खाने को मिला नहीं है, आज मेरे भोजन की व्यवस्था आपने कर दी है। वो ये देख के कहते हैं अरे एक तरफ तो सुग्रीव का मृत्यु है, एक तरफ ये देखो गीधराज हम क्यों खाने के लिए आ रहे हैं, सामने समुन्द्र है। तब हनुमान जी के मुख से निकला एक तो वो जटायु था जो सीता की रक्षा करते हुए राम के कार्य में बलिदान दिया, और एक ये गीध है जो राम के भक्तों को त्रास दे रहा है। अरे वो कहता है किसका नाम लिया, जटायु मेरा छोटा भाई था, मेरा नाम संपाति है, और हम दोनों भाई आकाश में उड़ते हुए सूर्य के किरणों से उसके पंखों को बचाते हुए मैंने वात्सल्य के कारण उसको बचा दिया, वो दंडकारण्य में गिरा और मैं यहां गिरा, मेरे पंख जल गए। अपनी तेज दृष्टि से देख के कहता है सामने लंका है और लंका के अंदर के सीता वहां विराजमान है, और अब आप में से कौन वहां जा सकता है, और वो जाने का अपना आप व्यवस्था कीजिए। ये कह के संपाति वहां से उड़ा, कहां उड़ के गया, तो संपाति के मन में आया कि मैं वाल्मीकि रामायण में नहीं है, दक्षिण भारत के रामायणों में ऐसा वर्णन है कि संपाति ने कहा मेरे भाई ने राम की इतनी सेवा की, मैं दर्शन तो करूं, लेकिन फिर कहा ऐसे कैसे दर्शन, कुछ सेवा करके जाऊं, सेवा क्या करूं, मैं ही गीधों की सेना को इकट्ठा करके जाके पहले तो लंका में सारे लंका को नष्ट करके रावण को भी मार के सीता को वापस ले जाके दूंगा, तब मैं अच्छी तरह से वहां उनकी सेवा कर पाऊंगा। तो संपाति ऐसे गीधों की सेना इकट्ठी करने के लिए चला गया, और फिर वो कब आता है वो कथा अंत में आएगी तब बताएंगे। अब वानर आपस में कहते हैं ये तो बहुत लंबा संयोजन समुद्र है, कौन जाएगा, कोई कहता मैं 50 जा सकता हूं, जामवत ने कहा मैं तो जा सकता था लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अंगद ने कहा 100 योजन में जा सकता हूं लेकिन वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा पता नहीं है, और तब तक हनुमान बहुत शांत बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं भक्त को, ऐसे कहने की जरूरत नहीं कि मैं ये कर सकता हूं, जब तक वरिष्ठ भक्त आशीर्वाद दे के कोई काम संपन्न करने के लिए कहे नहीं, तब तक अपनी ओर से कहने की आवश्यकता नहीं है। तब सबसे वरिष्ठ जामवत जी ने जो ब्रह्मा जी के पुत्र है कहा ए वायु हे अंजनी पुत्र, हे वायु नंदन, आप क्यों शांत बैठे हुए हो, ये काम तो आपको जाते समय राम जी ने मुद्रिका दी थी, ये कल की कथा में शायद मुद्रिका की बात आई कि नहीं आई, तो जब दक्षिण दिशा में जाने वाले वानर थे तो सुग्रीव ने हनुमान जी का परिचय कराया, करता ये हमारा कुशल सचिव है और ये निश्चित रूप से आपके कार्य को संपन्न करेंगे, राम जी ने बड़े प्रेम से उनको मुद्रिका दी। तभी कहते हैं राम जी सभी अपने आभूषण छोड़ के आ गए तो ये मुद्रिका कहां से आ गई, कैसे रह गई। तो ये मुद्रिका के ऊपर बहुत सी चर्चाएं हैं। एक चर्चा तो ये है कि जनक जी ने छोटी अंगूठी में मुद्रिका डाली थी, शादी की मुद्रिका तो बीच वाली उंगली में डलती है, रिंग फिंगर उसका नाम ही है, लेकिन छोटी उंगली में मुद्रिका डाली थी। और उसका ये मानना है कि छोटी उंगली में मुद्रिका वाले प्रेम से घर में रह सकते हैं, झगड़ा कम होता है, ऐसा वर्णन है। तो ये मुद्रिका छोटी सी पड़ी थी, जो डली हुई वहीं पड़ी थी। और एक भाव ऐसा दिया है कि ये मुद्रिका सीता जी ने बनाई थी, उसके ऊपर राम जी का नाम लिखा हुआ था, और उसका विचार था कि मैं ये उनको भेंट दूंगी राज तिलक में, लेकिन उस समय तो राज तिलक हुआ नहीं, तो साथ लेके आ गई थी। और जब चित्रकूट में रहे थे और शादी की वार्षिक गांठ आई, एनिवर्सरी आई तक राम जी को दी, तब तक वहां से उठा के नहीं आए थे। तो इस मुद्रिका के विषय में बहुत सी चर्चा है। जो भी है, हनुमान जी ने उस मुद्रिका को सर पे ऊपर लगाया और मुद्रिका अपने मुख में रख ली, क्योंकि वानर के ऊपर रखने के लिए कोई और साधन तो था नहीं। और इसी वचन को लेके साधक कहते हैं कि देखो भाई, कान के लिए आपको कुंडल है डाल सकते हो, एयरिंग है डाल सकते हो, कुंडल पुरुष डालते हैं, एयरिंग माताएं डालती हैं, नाक में भी कुछ कोका डाल सकते हो, आंख में अंजन डाल सकते हो, लेकिन जीभ का आभूषण क्या है? बड़ा जीभ का आभूषण है राम नाम, राम मुद्रिका, राम मुद्रिका मुख में लिए। यहां से सुंदर कांड शुरू होता है, यहां किष्कंधा कांड समाप्त होता है। और ऊपर राम जी का ध्यान करके राम जी के बाण की तरह ऊपर उड़ने के लिए तैयार हुए हैं, तो पीछे से पूरा पहाड़ हिल गया है और आकाश मार्ग में हनुमान जी उड़े हैं। अब ये हनुमान की यात्रा सीता को ढूंढने की है। इसलिए कभी कभी कहते हैं दो प्रकार के लोग संसार में होते हैं। एक प्रकार के लोग होते हैं रावण जैसे, जो भगवान राम की प्रिय सीता को, जो लक्ष्मी है उसको, राम को वन में छोड़ के भोगने के लिए भगा के ले जाते हैं। और दूसरे हनुमान जैसे लोग होते हैं जो उस महालक्ष्मी को लाके वापस राम जी के चरणों में अर्पण करते हैं। तो इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक रावण के प्रकार रह के लोग हैं जो लक्ष्मी को भोगना चाहते हैं और नारायण का परित्याग कर देते हैं, और दूसरे हनुमान जैसे लोग हैं जो भक्ति प्रदायिनी सबकी माता लक्ष्मी वो सीता को राम जी से वापस मिलाने का कार्य करते हैं, उनकी सेवा में वापस ले आते हैं। तो ये हनुमान जी आकाश मार्ग से जब उड़े हैं तो ये एक भक्त की यात्रा है, भक्त की यात्रा है। और भक्ति देने वाली जनक जननी यहां सीता माता है, जो भगवान की अंतरंग शक्ति अलादिनी शक्ति है, जो भक्त को भक्ति का प्रसाद देती है। तो भक्त की यात्रा में आगे जाते हुए समुद्र ने देखा कि सगर के कुल का इक्ष्वाकु वंश का आज राम जी के कार्य के लिए जाते हुए इस वानर राज को कुछ सुख देना चाहिए, लंबा सफर है। और उसके अंदर समुद्र के अंदर मिनाक नाम का पर्वत था, जिसको वायुदेव ने बहुत प्रेम से सखा बना के इंद्र के वज्र से बचाया था। उसको कहा कि आप बाहर निकल के जाओ, हनुमान को आतिथ्य करो, उसकी मेहमानी करो, उसको बोलो थोड़ी देर रुक जाए और रुक के फल फूल खाए, विश्राम करे, फिर आगे जाए। असल में देवता परीक्षा लेना चाह रहे थे कि इतना बल है हनुमान में कि नहीं। तो ये जैसे मिनाक पर्वत खड़ा था, हनुमान जी तो जा रहे थे, ऐसे भुजाएं आगे थी, और जिस मार्ग से जा रहे थे वो तो देवताओं का मार्ग है। जैसे आकाश मार्ग में अलग अलग मार्ग है, एक देवताओं का सिद्धों का मार्ग होता है, उस मार्ग से वो चलते रहते हैं। तो उस आकाश मार्ग से जाते हुए मिनाक पर्वत जो बाहर आया तो छाती की ठोकर मारी, पर्वत जाके नीचे, जो शिखर नीचे गिरा, लेकिन उसके भाव वात्सल्य का था। और हनुमान जी को फिर स्वरूप धारण करके कहा कि आप थोड़ी देर विश्राम कीजिए, फल फूल खाइए, लंबा सफर है, मैं आपके पिता का मित्र हूं, मेरा नाम मिनाक है, समुद्र ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है। हनुमान ने फिर हाथ लगा के कहा, मैंने आपका ये आदर सत्कार स्वीकार किया, लेकिन राम के काम में विश्राम नहीं करूंगा। मैं सब मेरे साथियों को कह के आया हूं, जब तक मैं सीता का पता नहीं लाऊं आप सब यहां रुकिएगा, हम सब साथ चलेंगे। पता लेने मैं जा रहा हूं लेकिन हम सब साथ चलेंगे, ये काम सबका है, टीम वर्क की बात करके, इसलिए मैं रुकूंगा नहीं, आज ही मुझे वहां पहुंचना है। तो ये भक्त के रास्ते में पहली सतोगुण की बाधा है। ये सतोगुण क्या आता है? भोग के रूप में आता है। सतो संजायते सुखम, सतोगुण में सुख होता है, सतोगुण में होता है सुख। और यहां आया है सतोगुण की पहली भक्ति के रास्ते में बाधा, और ये जो बाधा है भोग की बाधा है, इसके ऊपर हनुमान ने विजय प्राप्त की त्याग के साथ। तो सतोगुण के रास्ते में जब भोग रास्ते में आए, सुख रास्ते में आए, तो थोड़ा सा त्याग और तपस्या का रास्ता ले लेना चाहिए। तो ये पहले वाली बाधा से हनुमान ने अपने आप को सुरक्षित किया। आकाश मार्ग में उड़ा है तो देवताओं ने देखा कि बल तो बहुत है, बल तो बहुत है लेकिन बुद्धि भी होनी चाहिए, केवल बल काम नहीं करता है। तो सांपू की माता हिरणाकश की पुत्री, नहीं हिरणाकश ये दूसरी बाधा है। अब हनुमान बड़ा होने लगा, सुरसा का मुंह बड़ा होने लगा, तब हनुमान ने इस रजोगुण की बाधा के ऊपर कैसे विजय प्राप्त की? निम्रता से, छोटा बन के मुख में चला गया और बाहर निकल के आया, कहा माता जी आपका वचन पूरा हो गया, ब्रह्मा जी का सत्य वचन, बेटा आशीर्वाद है, जाओ सफल हो जाओ। तो ये रजोगुण की बाधा जो है इसमें अहंकार बहुत बड़ी चीज होती है, एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास किया जाता है, एक दूसरे से वो बड़ा बनने का प्रयास किया जाता है, और ये बाधा रजोगुण की है। इसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भक्तों को निम्रता का सहारा लेना चाहिए, छोटा बनने का प्रयास करना चाहिए। तो इसके ऊपर अब आकाश मार्ग से जाते हुए हनुमान ने देखा आगे उड़ नहीं पा रहा हूं, याद आया कि मुझे सुग्रीव ने कहा था समुद्र के अंदर एक हिरणाकश्यपु की पुत्री विपरमुखी राक्षस की पत्नी सिंह का रहती है, जो छाया को ग्रहण कर लेती है। हनुमान ने नीचे देखा तो मुंह खोल के राक्षसी खड़ी है, ये तमोगुण, वैसे तमोगुण काला होता है, दोष ढूंढता है आदमी को, दोष ढूंढता है, जैसे छाया काली होती है और ये काली छाया को ग्रहण करने वाली होती है, जो दूसरे में दोष देखता है उसको ईर्ष्या कहते हैं, साड़ कहते हैं, एनवियसनेस कहते हैं, हसद कहते हैं, जो दूसरे को देख के जलता है। तो ये सिंहनी को जब देखा मुंह खोले हुए, तो इस तमोगुण की बाधा के ऊपर हनुमान उसके मुख में चले जाकर उसके सीने को तोड़ के फाड़ के उसको मार के नष्ट करके आकाश मार्ग में उड़े है। तो तमोगुण को तो जड़ से उखाड़ के फेंक देना है, नहीं तो आगे बढ़ना मौत बहुत मुश्किल है। ये ईर्ष्या जो है, ये एनवियसनेस जो है, ये दूसरे से जलन जो है, ये भक्त को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी रुकावट होती है। छाया ग्रहण करने का मतलब है कि उसके दोषों से उसको गिराने का प्रयास किया जाता है, उसके गुणों को नहीं देखा जाता है। हनुमान त्रिकूट पर्वत के ऊपर उतरा है, लंका में पहुंच गया है, दिन है और लंका का अच्छी तरह से निरीक्षण किया है, पुष्पक विमान को देखा है, नगर के चारों ओर की सुरक्षा की व्यवस्था को देखा है, सिक्योरिटी को देखा है। शाम का इंतजार करके छोटे से बिल्ली की साइज का वानरी से देखने में था, लेकिन बिल्ली की साइज का छोटे से बन गए हैं और लंका को कूदने का दीवार के ऊपर चढ़े हैं, तो लंका की वास्तु देवी लंकनी कहा चोर कहां जा रहे हो? हनुमान ने मुड़ के देखा कि मैं चोर कहां हूं? चोर तो रावण था जो सीता को लेके गया, उसको तो आपने देखा नहीं, उसको रोका नहीं, मैं उसको ढूंढने जा रहा हूं, चोर मैं हो गया। हनुमान नीचे पीछे मुड़े, लंकनी उसके ऊपर आगे आई तो उन्होंने उल्टा हाथ, बोला स्त्री है, मारूंगा तो मर जाएगी, सीधे हाथ में जरा बल ज्यादा है, उल्टा हाथ थोड़ा हल्का सा मारा, धड़ाम से नीचे गिरी, मुंह से खून निकला और कहा ब्रह्मा जी ने कहा था जब कोई वानर सीता को ढूंढते हुए राम की तरफ से आए और तुम्हें गिराए तो समझ लेना कि लंका का विनाश होने वाला है, तो बेटा अब मेरी आशीर्वाद है, तुम जाओ तेरी विजय प्राप्त हो। ये चौथी बाधा क्या है भक्ति के रस्ते में? ये भक्ति के रस्ते की बाधा ये है कि आप जब भक्त बन के थोड़ा सा ज्यादा कथा में जाके और नाम जप करने लगते हो ना, तो आपके ही चारों ओर आपके संग दोस्त मित्र कहेंगे अरे तू खराब हो गया, क्या बिगड़ गया है, सारा दिन कथा में जाता है, अब चोर कौन है? चोर रावण है कि चोर हनुमान है? वो अरे अच्छे रास्ते पे जा रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, यहाँ कहाँ जा रहा है, ये कोई जाने की जगह है अभी, ये तो अभी कोई कथा का टाइम है तुम्हारा, पागल है क्या? तो ये लंकनी जैसे बहुत से लोग भक्ति के मार्ग में आखिरी बांधा वो अपने ही होते हैं, उनको थोड़ा सा हल्का झटका देना पड़ता है तब कहते हैं आशीर्वाद भले करो, और उनको बहुत समय लगता है ये बात समझने में कि हमने सही काम किया है। बहुत साम हमारे तो दृष्टिकोण से कम 20 से 25 साल इंतजार करना पड़ेगा, तो वो लोग जो कहते तुम खराब हो वो कहेंगे आपने अच्छा किया, हमको लेट हो गई, बहुत समय लगता है इसमें। अब हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप से रात को सब जगह देखा, रावण के महल में मंदोदरी को देखा, थोड़ी देर देखा कि ये शायद हो सकता है सीता है, फिर देखा ये कैसे सीता हो सकती है, ये सीता नहीं हो सकती है, इतनी सुख से नहीं रह सकती है। चार उंगल भी कहीं धरती का नहीं था जो हनुमान ने नहीं देखा हो। जब निराश होने लगा तो वाल्मीकि रामायण में तो इसका वर्णन नहीं है, लेकिन तुलसीदास कहते हैं कि विभीषण के घर का दर्शन हुआ और विभीषण से मुलाकात हुई। वाल्मीकि रामायण में विभीषण की सहायता का वर्णन है, उसकी बेटी त्रिजटा के सहायता का वर्णन है, लेकिन हनुमान और विभीषण के मिलन का वर्णन घर में नहीं है। लेकिन वहां उन्होंने देखा कि एक जगह मैंने नहीं देखी, ये सामने एक बहुत सुंदर बगीचा है, इसमें जाके देखूं, और वो अशोक वाटिका में जैसे गए हैं, पेड़ के ऊपर छुप के बैठे हैं। अब ये रात का समय है, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक बहुत दुबली पतली सोई नहीं हुई है, रात सारी रात जागती हुई ये दिव्य मूर्ति बैठी है, अगर ये सीता होगी तो सुबह जरूर सूर्य को प्रणाम करेगी, और प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुबह देखा सूर्य को प्रणाम करते हुए समझ गए ये है, लेकिन मैं देखता हूं सारा दिन होता के तो राक्षसी आई, तब तक रावण उससे मिलने के लिए आया, बहुत सी और स्त्रियां और राक्षसियां उसके साथ थी, फिर सीता ने तिनका रखा, रावण की ओर नहीं देखा, तिनके की ओर देखा, उस तिनके के ऊपर कई कारण लिखे हैं, तिनके के कल आपको दो तीन कारण बताए थे, सीधा बात नहीं रावण से किया है, और कहा है रामचंद्र आज नहीं तो कल आएंगे, जिस दिन मुझे विश्वास हो गया कि वो नहीं आएंगे उस दिन मैं शरीर छोड़ दूंगी, इस तिनके के समान मैं शरीर को ही छोड़ दूंगी, और ये तिनका जैसे आग एक मिनट में जला देती है, रावण मैं तेरे को अभी जला सकती हूं मेरे तपोबल से, लेकिन मैं ऐसे करूंगी नहीं, ऐसे करूंगी तो राम की कीर्ति कैसे होगी, वो आपके यहां आकर जब आपको दंड देगा तब राम की कीर्ति होनी चाहिए। और रावण कह के गया बाकी एक महीना बचता है, 12 महीने तेरे पूरे होने को आए हैं, इस महीने में अगर तुमने नहीं मेरी बात मानी तो तुम्हारे को कटवा दूंगा, इसको डराओ धमकाओ समझाओ, ऐसे करके रावण चला गया। ऐसे कहते हैं पीछे जो और स्त्रियां थी वो सीता को कह रही थी डरो मत, ये ऐसे बोलता रहता है, वो ऐसे कह रही थी, ऐसा बल्कि रामायण में वर्णन है। उनके जाने के बाद राक्षस ने सीता को थोड़ा परेशान करने, ऊपर हनुमान देख रहा है उसको क्रोध भी आ रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। इसी देर में थोड़ी देर में त्रिजटा आ गई, और त्रिजटा ने आके कहा मैं सोई हुई थी, मैंने एक सोपन देखा है, कोई राम का दूत वामन एक वानर लंका में आया है और वो लंका को जलाएगा। हनुमान ने बोला ये तो मेरे प्लान में नहीं था, अच्छा आइडिया इसने दिया, चलो एक काम ही करते जाएंगे। और फिर कहा है कि उसके बाद राम जी यहां आ जाएंगे, और इसलिए आप अब सीता को कोई परेशान नहीं करे, अब तो सबने इससे कहा कि अब इससे दूर रहो, इसको परेशान मत करो, सब छोड़ो अपने आप। और सीता विलाप कर रही है कब तक मैं रहूंगी, ये तो रोज परेशान करती है। अब हनुमान ने ऊपर से बैठे कहा कि मैं किस तरीके सीता से मिलूं, कौन सी भाषा में बोलूं, तो वो पूर्वी भाषा में बैठ के राम कथा गाने लगा। तो सीता ने देखा कि वैसे तो प्राण त्यागने का सोच रही थी, लेकिन राम कथा को सुन के थोड़ा ये कौन है जो मेरे प्राण रखने के लिए प्राणनाथ की कथा बता रहे हैं, तो हनुमान जी नीचे उतर के आए हैं। हरे कृष्ण, कथा वानरों की हो गई है तो ये सब कुछ होना है संभव है। इस कथा में तो नॉर्मल है ये। हरे कृष्ण, सर धन्यवाद है राम जी को कि इतने वानरों के साथ रहा कैसे, उनको संभाल के कैसे रहा। सो पहले तो कहा कि आप राक्षस तो नहीं हो, माया तो नहीं है। तो हनुमान ने अपना परिचय दिया तो सीता ने कहा राम लक्ष्मण का आप मेरे को अंग का कांति बताओ। उन्होंने सब अंग बताए और फिर जब मुद्रिका देखी तो मुद्रिका को पहचान लिया। और तब हनुमान ने कहा माता कहो तो मैं अभी तेरे को उठा के वापस राम जी के पास ले चलता हूँ। सीता ने कहा बेटा तुम ये कर सकते हो, तुम यहां आए हो तो ले भी जा सकते हो, लेकिन मैंने जानबूझकर पर पुरुष को हाथ भी नहीं लगाया है। तुम मेरे पुत्र हो लेकिन फिर भी हो तो पुरुष ना। और फिर रावण मुझे चोरी करके उठा के आया, तुम मुझे चोरी करके ले जाओ, तो इसमें दोनों में अंतर क्या रह गया? और संभवतः तुम जाओ ये सब तुम्हारे से लड़ाई करें और उस लड़ाई के बीच में कहीं तुम्हारे को ये रोके और मैं समुद्र में गिर जाऊं तो राम जी को कैसे मिलूंगी। तो इसलिए बेटा ये तो राम जी को कार्य करने दो। अब हनुमान ने कहा थोड़ा भूख लगा है मां क्या करूं। हरे कृष्णा बेटा ये गिरे हुए फल खाना पेड़, ये बहुत प्रिय बगीचा है रावण का और यहां उसके कई राक्षस रक्षा करते हैं। जामुल ही इसका यहां का इंचार्ज है, वो वैसे दिखेगा नहीं क्योंकि एक बड़ा शराब का तालाब है उसके अंदर पड़ा होता है। बोलो कौन उठाए कौन पिए, पड़ा होता है, जब जागता है तो पीता है फिर उसी में सोया रहता है, तालाब के अंदर ही पड़ा है भैया। तो कौन बोतल बोतल उसको इतना परेशान नहीं है, तालाब ही बना के दिया गया, यही पड़ा रहे कहीं जाए नहीं। तो रावण हनुमान ने कहा ठीक है मैं तो ऐसे, और सारे पेड़ों को ऐसे हिलाया, फल गिरा खाया। जब पेड़ उजड़ने लगे तो जामुली उठ के बाहर आया हनुमान के सामने, वो घुटने जितना लगा। नो कौन है, बोला हनुमान उठा मतलब देखो कौन है, देखा एक पटका नीचे। अब उसको जो पटका वो नीचे गिरा और राक्षस आए, पांच सेनापति आए मार दिए, अक्षय कुमार आया घुमा घुमा के मारा। अब तो चौथाई सेना का तो 20% सेना का तो सतन समाप्त कर दिया। अब मेघनाथ आया और मेघनाथ के याद युद्ध किया तो मेघनाथ ने ब्रह्मस्त्र चलाया हनुमान को। तो ब्रह्मा जी ने कहा था मेरा ब्रह्मस्त्र तुम्हारा कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन उसका सम्मान करने के लिए हनुमान चुप करके बैठ गए। वो मूर्ख बाकी जो आए राक्षस उसको मूंझ के रसों से बांधने लगे। मेघनाथ बोलता है गलत काम कर रहे हो, ब्रह्मस्त्र चला जाएगा दूसरा रसा बांधने से, और ये निकल गया तो बहुत बड़ा फिर उपद्रव करेगा। हनुमान जी ने कहा अब बंधा हुआ हूं तो देख लूं अंदर क्या है, बाहर तो देख लिया। ले गए रावण की सभा में, रावण को देखा, उसके चेहरे के तेज को देखा, बोला ये भक्त होता तो कितना अच्छा होता, इतना इतना भला उसका प्रभाव है, क्यों ना हो प्रभाव, वैकुंठ से आया हुआ है, भगवान का सेवक है ऊपर का, इतना सा उसका प्रभाव क्यों नहीं होना चाहिए। और फिर उसको कहते लंकेश मैं तो राम दूत आया हूं यहां सीता का पता लगाने के लिए, और मैं चाहता हूं कि सीता आप वापस दे दो, बड़े दयालु है रामचंद्र, आपको क्षमा कर देंगे और ये झगड़ा समाप्त हो जाए। रावण ने कहा इस वानर ने इतना सत्यानाश करके मेरे पांच सेनापति और मंत्री चार और एक मेरे पुत्र को मार दिया है, इसका वध कर देना चाहिए। तब विभीषण उठ के कहा नहीं महाराज, दूत का वध वर्जित है लेकिन इसको दंड कोई दे दिया जाए। बोला दंड क्या देना है इसको, इसकी पूछ में बड़ा आसक्ति होती है, इसकी पूछ को जला दो। और वार्तालाप बहुत हुई है, समय अपने पास बहुत कम है। अब जब इसकी पूछ के ऊपर सारा कपड़े बावड़े बांधे हैं तब ये बंधा हुआ उठ के ऊपर उठा है सब छत्तों के ऊपर, लंका को जलाने लगा है, हाहाकार मच गया है सारी लंका में। और जलते 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 फिर कमन समुद्र में कूद के अपनी पूंछ को बुझा के सोचा मैंने ये सब कुछ जलाया, ऐसा तो नहीं है कि अशोक वाटिका में सीता के ऊपर से आग का प्रभाव पड़ा। फिर देखता अरे मेरी पूंछ को ये आग इतनी लगी थी, मेरे को गर्मी क्यों नहीं लग रही। हो सकता है कि मेरा पिता वायुदेव अग्नि का मित्र है, कहा होगा को मुझे नहीं जलाए, नहीं तो मेरी पूछ भी नहीं जलाए, इसे कोई पीछे लगाए कि जैसे कोई आइसक्रीम पीछे लगा रखी है, ये आग नहीं लग रही थी, ये बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था। और ये नहीं जलाऊं ये तो कृपा, सीता की कृपा के कारण नहीं जलाऊं, उसको क्या करेगी आग, उसकी कृपा से मैं नहीं जलाऊं। कूद के सीधा माता सीता के पास गया है, सीता को प्रणाम किया है, कहा माता जी मेरे से जो हो गया मैं जलाने वाला काम भी कर दिया है। सीता ने कहा देखो राम जी को कहना अब मेरे से विरह सहा नहीं जाता है और एक महीना शेष बच गया है, अब तत्काल आके मेरा उद्धार कीजिए, ऐसे जो भी उनको। और फिर अपनी एक चंद्रकला, बोला ये मेरी आप मुझसे मिले हैं ये सुमृति राम जी को देना। हनुमान जी कूद के ऊपर से किलकार करते आते हैं, नीचे अंगद आदि कहते हैं हनुमान खुश आ रहा है, इसका मतलब सीता का पता लगाया। और हनुमान जी का हाँ सीता का पता भी लगाया, अंगद बोलता चलो फिर यहां से सीता को ले चलते हैं, हनुमान चलते हैं रावण को मार देंगे। जंप हम सब लगा सकते थे, लेकिन काम आपको करना था हनुमान, इसलिए हमने कहा हम नहीं जा सकते। ये काम सभी हम कर सकते हैं, एक एक कर सकता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु का एक एक भक्त एक एक पूरा लोक तार सकता है, तो ये रामचंद्र का एक एक वानर कुछ भी कर सकता है। तब ये सब वहां से तीव्र गति से आए हैं और भूखे थे, प्यासे थे। जो मधु का बगीचा था सुग्रीव का, उसके अंदर मधु पीने लगे हैं। और जो सुग्रीव का बेटा वहां दधी बैठा था, उसने कहा था ये तो महाराज का बगीचा है। बोला महाराज को छोड़ो, अभी भूखी लगी। उसने जाके शिकायत की, अंगद और सारे साथी मधु का भंगवा, आपका मधु पी गए। अंगद को सुग्रीव खुश हुआ, बोला अगर एक महीने के बाद आए हैं और मधु के बगीचे में मधु पी, इसका मतलब सीता का पता लगा है, नहीं तो ये आते ही नहीं। जल्दी जाओ, उसको बुला के आओ। तत्काल बुलाया है, वो वहां पहुंचे हैं। तो अंगद ने अपना समाचार दिया है। फिर वरिष्ठ जामवत बोले है कि हनुमान जी गए थे, ये समाचार लाए हैं। और राम जी ने हनुमान से जब पूछा है तो उस वक्त गले से लगा है कि आप हमारे भरत के समान भाई हो, आप लक्ष्मण से भी दो गुना मुझे ज्यादा प्यारे हो। लक्ष्मण तो खड़ा हुआ उधर, कहता है मेरे से भी दो गुना प्यारा कैसे है? ये तो कहे तो अभी मिला है, मैं कब से साथ में आ रहा हूं। वो जब विवाह करके सीता को लाए तो लक्ष्मण जी गुरु वशिष्ठ के पास गया, बोला गुरु जी आज 15-16 साल से दिन रात हम उठते बैठते खाते पीते साथ थे, अब ये कल शादी करके वो आए, अभी मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, अब मेरी सेवा आधी कट गई, मैं कहां जाऊं। तो वशिष्ठ जी का ऐसे करो, घर के अंदर होंगे तो सीता सेवा करेगी, घर से बाहर आपकी सेवा, दोनों की सेवा बांट देते हैं। तो उसका तो इतनी आसक्ति थी, तो कहा दो बार क्यों कहा? बोला दो बार इसलिए कहा प्रिय हो कि आगे लक्ष्मण को जब मूर्छित होगी तब हनुमान जी जाके संजीवनी लाएंगे, और उस वक्त राम जी को विलाप करते हुए लक्ष्मण को दोबारा दिला देंगे हनुमान जीवित करके। इसलिए लक्ष्मण एक तो लक्ष्मण तुम्हारे समान प्यारा है, लेकिन तुम्हारे प्राण बचाला, इसलिए डबल प्राया, ये डबल मुझे प्रिय है, छाती से लगा लिया है। वैसे भगवान वक्ष स्थल पे लक्ष्मी का केवल स्थान होता है, भगवान ने वो स्थान दिया है। और बड़े प्रश्नों के कहा अब अभिजित मुहूर्त है, आज ही यहां से प्रस्थान करो। और वानरों को कहा आगे रास्ते से देखो, देखते जाओ पानी जहां उस रास्ते से जाना। ये भगवान श्री रामचंद्र की ऐसी एक अद्भुत सेना है जिसके ऊपर एक रुपये का भी खर्चा नहीं, जीरो बजट आर्मी। राम जी की सेना में न सैनिकों को वर्दी चाहिए, न अस्त्र शस्त्र चाहिए, न भोजन का भंडार चाहिए। ये वानर है, जहां पेड़ के ऊपर सो जाए, पत्थर उठा के मार देते हैं, कपड़ा पहनने की जरूरत है नहीं। ये जीरो बजट ऐसी आर्मी आज तक किसी ने नहीं बनाई। कभी कभी कृष्ण राम के भक्त आपस में लड़ते हैं, वो कहते अरे भाई कृष्ण ने गैया चराई, वो बेचारी तो चुप रहती है, यहां वानर संभालना कितना मुश्किल था। इतने सारे वानरों को साथ लेके चले हैं, और जब समुद्र के किनारे पे आए हैं, समुद्र के किनारे पे जब पहुंचते हैं, तो इस बीच में ये समाचार सामने मिला कि समुद्र के किनारे तक बहुत बड़ी सुग्रीव के साथ जामवंत अपनी कई अक्षों लाखों की सेना लाया है, हनुमान की सेवा में कई करोड़ बांदर हैं, सबकी सेना वहां खड़ी है, कोई गिनती नहीं हो सकती है। तो रावण ने वहां मीटिंग बुलाई है, अपने गुप्तचर यहां भेजे हैं। उस मीटिंग में विभीषण ने कहा है कि आप वापस दे तो लंकेश, अब ये आपका कुल नाश होने वाला है। और दूसरी मीटिंग में जब बात ये कही तो बोला तुम हमारे को कम, अंगद ने कहा कि ये हमारा काका हमारे को कमजोर कर रहा है, तो उसने कहा तुम निकल जाओ। तो अब विभीषण ने कहा अब मैं यहां नहीं रहूंगा। आकाश मार्ग से विभीषण अपने चार मंत्रियों को साथ लाके खड़ा है, कहते श्री राम मैं आपके शरण में हूं। उसको देखकर सुग्रीव कहता है नहीं नहीं ये शत्रु का भाई है, इसको शरण में नहीं लेना चाहिए। अंगद कहता है इसको बंदी बना दो। हनुमान कहता है नहीं अच्छा है, मेरी रक्षा के लिए प्रवचन किए थे, इसकी बेटी ने मेरी सीता की सेवा कर रही है, इसलिए इसको शरण में लेना चाहिए। राम जी ने मीटिंग बुला के और कहा कि आप कोई कहता है इसको पकड़ लो, कोई कहता है ये अच्छा है, मैं ये मेरा, राम जी कहते शक्रदेव परपना, एक बार कोई कहे कि मैं तुम्हारा हूं, या चते अहम त्वाम, मैं आपका हूं, ऐसे कोई कह दे मैं उसको सब तरह से रक्षा करता हूं, ये मेरा वचन है। मैं ये नहीं देखता हूं कि वो बुरा है कि अच्छा है, उसके अंदर शरणागत के दोष को नहीं देखता हूं, इसने कह दिया है मेरा हूं तो आप इसको लाइए, मैं इसको स्वीकार करता हूं। आप कहते हनुमान अच्छा है इसलिए शरण में लो, नहीं आधा सच है, जैसा है शरण में आया है तो मेरे शरण में आया है। और जल्दी करो सुग्रीव, पानी का बंदोबस्त करो समुद्र का, इसको लंकेश बनाते हैं, आज विभीषण तुम लंका के राजा हो। विभीषण को जब शरण में लिया है, बोला अब समुद्र को पार कैसे कर किया जाए, तो विभीषण कहता है समुद्र की पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। तो राम जी ने कहा अभी अभी मित्रता की है इसके साथ, इसकी बात मान लेते हैं। दो दिन समुद्र की प्रार्थना किया, समुद्र आए नहीं। राम जी तीसरे दिन कहा मेरा बाण धनुष बाण लाओ लक्ष्मण। और समुद्र के ऊपर बाण का जैसे ही अनुसंधान किया है, समुद्र थर थर कांपता और सारे जलचर ऐसे जलने लगे। समुद्र ने कहा क्षमा करना, हम समझ नहीं पाए, अब आप मर्यादा का पालन कीजिए। वैसे तो आप जैसे चाहें जा सकते हो, लेकिन आपके साथ ये जो शिल्पकार, क्या नाम उसका, नल और नील किसके बेटे हैं, शिल्पकार जो है देवताओं का शिल्पकार विश्वकर्मा के बेटे हैं, इनको वरदान है। वैसे ये भी बहुत बहुत उदंड थे, ये ऋषियों के आश्रम में जाके सामान सब फेंक देते थे पानी में, ऋषि ढूंढने कहां जाए, बोला ये कोई चीज फेंके तो उसकी चीज तरती रहेगी, तो इनके वरदान आज काम आ जाएगा, इनको बोलो सेतु बांध देंगे। और 5 दिन के अंदर 100 योजन लंबी और 10 योजन चौड़ी सेतु तैयार होगी। आज के इंजीनियर इतनी बड़ी नहीं बना सकते इतने टाइम में, हाँ कोई सीमेंट नहीं, कोई पिलर नहीं, वो सेतु तैयार हो गई और उसके ऊपर फिर फल फूल पत्ते बिछाए हैं। अब कहते हैं इतनी भीड़ हो गई वानर इस सेतु के ऊपर, इतनी लंबी सेतु है 10 योजन लंबी, एक योजन में तकरीबन कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर होंगे, हाँ 80 किलोमीटर, और 100 योजन लंबी, उसके ऊपर चल नहीं पाए तो कुछ वानर तो ऊपर से आकाश मार्ग से कूदने लगे। और उस वक्त राम जी चढ़े हनुमान जी के कंधे के ऊपर और अंगद के कंधे के ऊपर लक्ष्मण चढ़े हैं, और उनकी सुंदरता को देखने के लिए सारे समुद्र के जलचर ऊपर आए। लगता है समुद्र सारा सेतु बन गया है पूरी समुद्र के ऊपर, अब जगह नहीं मिली वानरों, बाकी जो है वो कोई मगरमच्छ के ऊपर चढ़ा है, कोई बड़े मछली के ऊपर चढ़ा है। तो कहते तीनों मार्गों से सेना जा रही है, कुछ आकाश मार्ग से जा रही है और कुछ समुद्र के मार्ग से जा रही है। बोलो समुद्र के मार्ग से जा रही है, कर्म करने वाले हैं, पहुंचे उधर के लेकिन प्रयास करके जा रहे हैं। आकाश मार्ग वाले ज्ञान वाले हैं, उड़ के जा रहे हैं, लेकिन वो सेतु के ऊपर भक्ति मार्ग है, उनको भगवान उनके साथ चलते हैं, भगवान सेतु पे चल रहे हैं लेकिन ऊपर से भी जा रहे हैं। तीनों मार्गों का वर्णन है। वहां सुबेल पर्वत की तलहटी में पहुंची है सेना, ये पता लगा है तो पहले रावण एक मुंह से बोलता था, उठ के 10 मुंह से बोला अरे समुद्र को बांध लिया, सेतु बंध गई, आश्चर्य कैसे हो गया, तो हो नहीं सकता है, बोले ये तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। और रावण ने सुक सारी को भेजा, बंदर बन के आए, वो विभीषण ने पहचान लिया और पकड़ के मार रहे थे। रावण जी ने राम जी ने कहा जाओ इनको छोड़ दो, रावण को बोलो कि अभी भी आपकी इच्छा हो तो आओ यहां और संधि करके समाप्ति कर दो। ये वापस गए और उधर जाके कहते जय श्री राम, रावण बोले क्या कह रहा, बोला लंकेश की जय, रावण की जय, क्योंकि महाराज वहां तो हमको पकड़ लिया था, राम जी ने हमको छोड़ लिया इसलिए जय श्री राम कह रहे थे, तो बेचारे भूल गए कि हम किसके आदमी हैं। तो ये ना ऐसी स्थिति उनकी हो गई है। अब यहां से सुवेल पर्वत के ऊपर चोटी के ऊपर राम जी ने अपना शिविर लगाया है सबका, और एक दिन विभीषण से पूछ रहे राम जी कि ये आकाश में बादल की घटा छाई है, वो बिजली चमक रही है और ये बड़ा आवाज आ रहा है गड़गड़ाहट का, बरसात तो नहीं आएगी। विभीषण बोला महाराज ये बादल बरसात नहीं है, वो जो काली घटा है ये मेरे भाई लंकेश के सर का मुकुट दिख रहा है, और ये बिजली चमक रही है, ये मंदोदरी बैठी हुई है उसकी मणियां चमक रही हैं, और ये गान चल रहा है वहां छत के ऊपर ना, ये मृदंग बज रहे हैं। और राम जी ने एक बाण का अनुसंधान किया, वो रावण जी का मुकुट और मंदोदरी के कान का कुंडल कहीं उड़ गया, और सब परेशान हो गए क्या हो गया, मुकुट कहां गया, ये इधर से उड़ गया, वो सब भयभीत के उठ गए ऐसे क्या हो गया महाराज, अब सुकन हो गया। राम जी तो मुस्कुरा रहे, बाण वापस आ गया लेकिन बोले अब सुकन। और रावण कहता है मेरा सर कटता है तो वो अच्छा सुकन होता है क्योंकि वापस आ जाता है, सर के मुकुट जाने से क्या फर्क पड़ता है, उसको अभी भी समझ नहीं आई। राम जी ने कहा कि एक बार और दूत भेजो, अंगद को दूत करके भेजा है, अंगद ने जाके वहां कहा है कि आप कौन से रावण हो, एक तो नीचे अही रावण ने बांध दिया था लड़के, उसको सारा दिन छेड़ा करते थे, एक मेरे पिता बाली ने कांख में दबाया था, एक वो रावण था जिसको सहस्र बाहु कार्तविक अर्जुन ने बंदी बना के रखा था पुलस छुड़ा के, उनमें से आप कौन से रावण हो। उसने कहा हमारी आपसे कोई शत्रुता नहीं है बाली नंदन, अब क्या कहने आए, मैं कहने ये आया हूं कि राम जी ने दूत करके भेजा है कि अभी भी लड़ाई और हम नहीं चाहते हैं और नरसंहार नहीं चाहते हैं, आप सीता को वापस दीजिए और यहां बात को समाप्त कीजिए, भले इसको बांधो। रामचरितमानस है उस अंगद के पांव को अंगद ने कहा हिला के देखो, लेकिन वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग नहीं है। उसको बांधने के लिए चार आए राक्षस, चारों को लेकर ऊपर उड़ा और ऊपर से कहता जो वो पहले हमारा हनुमान जला के गया है ना, वो तो सिर्फ संदेश देने के लिए और हर एक इससे ज्यादा बलवान है और ये सब आए हैं वहां बैठे हुए हैं, अब आप नहीं मानते हो तो समय का इंतजार करो। और वापस अंगद वापस आया है। इस बीच में कहते सुग्रीव ने रावण को ऐसे देखा बैठा हुआ तो जंप मारा, सीधा रावण के पास गया अकेला और उसको नोच के नीचे गिराया, रावण उसको पकड़ रहा था तब जंप लगा के वापस आ गया। राम जी ने कहा सुग्रीव कहां गए थे, बोला वहां उसको देखा मेरे को गुस्सा आ गया। बोला आप किष्कंधा के राजा हैं, आपको कुछ हो गया होता मेरे मित्र, ऐसे मत किया करो, कुछ मुझसे पूछ के काम करना है, कोई कहीं से भी भाग के ऐसे चला जाता है। अब युद्ध के चार दरवाजे लंका के थे, चार सेनाओं की टुकड़ी बनाई, एक दिशा में हनुमान जी को रवाना किया, एक दिशा में राम लक्ष्मण स्वयं खड़े हुए, एक दिशा में नील गया, एक दिशा में सुग्रीव को, इस तरीके से चारों दरवाजों से आक्रमण शुरू होता है। कौन 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 से दरवाजे पे इसका सारा वर्णन है। ये युद्ध बहुत लंबा चला है, ये युद्ध कोई मेरे ख्याल में 18 दिन कुछ लंबा चौड़ा युद्ध चला है। अपने को लंबा युद्ध का वर्णन नहीं करना है, राम जी को राज तिलक करना है आज। इस युद्ध के अंदर कई सेनापति मरते रहे रावण के, रावण अभी खुद नहीं आता था लेकिन कोई ना कोई आता था और रोज समाचार घर में पहुंचता था कि एक गया, दो गया, तीन गया। और जब बहुत परेशान हुआ तो कुंभकर्ण को उठाया, भैया को, कुंभकर्ण को उठाने की सबको पता है। उठ के पहले आया, बोला क्या बात है, बोला बहुत बड़ी भारी सेना है, आपकी सहायता की जरूरत है। बोला क्या किया था, बोला मैं वहां से वन से स्त्री लाया था। बोला हमसे पूछ के गए थे, जब लाए तब पूछ के नहीं गए, परेशानी हुई तब हमारे से पूछ रहे हो, आपने काम तो अधर्म का किया है, लेकिन भाई हो क्या कर सकता हूं, अब आप चिंता मत करो मैं जाता हूं। और वो युद्ध भूमि में गए तो राम जी पूछते विभीषण ये पर्वत कैसे चल रहा है, इतना भारी पर्वत जैसे आ रहा हो और चल रहा है। और आया तो उसमें लिखा है वाल्मीकि रामायण में वो ऐसे जैसे चने खाते हैं, ऐसे वानरों को उठाए और ऐसे मुख में डाले 25-50 ऐसे, और वानर उसके ऊपर घूम रहे हैं जैसे पहाड़ के ऊपर घूमे। बड़ा आश्चर्य लगा और सुग्रीव उससे लड़ने लगा, सुग्रीव को कांख में दबाया और जाने लगा लंका में, सबको हाहाकार, वानर परेशान होकर अरे सुग्रीव कहां हमारा राजा, तो बड़ी चिंता हुई। लेकिन सुग्रीव को सचेत हुआ तो कांख के अंदर से नाखून से काटा, दांत से काटा, उसने नीचे फेंका और फेंका, तब तक सुग्रीव कूद के वापस आ गया, सबको लगा कि सुग्रीव वापस आया। विभीषण वापस लौट के आया अपना कुंभकर्ण, और फिर कुंभकर्ण और राम जी, अब मालूम है कि कुंभकर्ण का उद्धार राम जी के द्वारा होगा। एक समय तो वो बहुत बड़ा भारी युद्ध करने लगा, फिर कैसे कृपा करके राम जी ने उसका उद्धार किया। कुंभकर्ण के गिरने के बाद रावण बहुत चिंतित हुआ, तब मेघनाथ आया है और मेघनाथ ने बड़ा माया का युद्ध किया है, और माया का युद्ध तो ऐसा किया कि एक तो सीता बना के लाके दिखाई के ओके ये देखो ये गर्दन काट दिया सीता का, राम जी हाय राम हाय सीते के, विभीषण बोला ये सब माया की सीता है महाराज, ये सीता नहीं हो सकती, आप चिंता मत करो। और वहां जाके कटे हुए राम का सर सीता को दिखाता है, देखो ये राम जी चला गया, आप किसके लिए रो रही हो, और सीता वहां विलाप कर रही है। और फिर तो उनको नीचे गिराया, एक तो एक नागफास चलाया था और नागफास में बंधे हुए दोनों भाई थे, तब आकाश मार्ग में सीता को उठा के ले आया, बोला देखो मरे हुए हैं, अब इस किसको क्या करोगी। तो सीता को विलाप करने लगी तो त्रिजटा कहती है ये पुष्पक विमान मुर्दे के ऊपर नहीं चलता है, ये जिंदा है, आप चिंता मत करो। और तब तक तो गरुड़ को लेके आया जाके, हनुमान गरुड़ को ले आया, गरुड़ सारे नागफास को खोल दिया। और इस तरीके से लक्ष्मण के मूर्छित होना, फिर संजीवनी, ये कथा सबकी सुनी हुई है। और अब मेघनाथ के साथ युद्ध करने के लिए विभीषण ने कहा इस वक्त मेघनाथ माया का युद्ध करके हम सबको ऐसे धोखे में डाल के पूजा करने गया है निकुमला देवी की, और उसकी यज्ञ की आखिरी आहुति हो गई और रथ के ऊपर चढ़ गया तो फिर उसको मारा नहीं जा सकता, इसलिए चलो उधर ही आक्रमण करते हैं। और लक्ष्मण हनुमान को साथ लेके विभीषण को लेके वहां गया है और यज्ञ के बीच में जाके लक्ष्मण ने ललकारा है कि युद्ध भूमि से भाग के यहां क्या पूजा पाठ कर रहे हो। तो उसने देखा सामना और कहा, ये चाचा तुम्हारा काम है, इसको क्या पता निकुमला के मैं मंदिर में हूं। तब कहते हैं घर का भेदी होता है तो लंका को जला देता है। विभीषण जो वहां से आया था, अब बहुत घोर युद्ध हुआ है लक्ष्मण के और मेघनाथ के बीच में। इस युद्ध को देखने के लिए आकाश में देवता आए हैं और समय आने के ऊपर जब समय पूरा हुआ तो मेघनाथ का लक्ष्मण जी ने जैसे उद्धार किया है, जय जयकार हुई, आकाश से पुष्प वृष्टि हुई, सारे देवता परेशान थे कि ये मेघनाथ इंद्र को बांध के आया, उसका नाम इंद्रजीत हो गया। और ये समाचार मिला है तो रावण बहुत दुखी हुआ है, ये तो अजय था हमारा इंद्रजीत, इसका कैसे वध हो गया। कहीं लिखा हुआ है कि रावण भागता हुआ सीधा सूतल लोक में बलि महाराज को कहता है, महाराज आप हमारे पूर्व राजा हो, हमारे लंका के ऊपर बड़ा संकट आया है, आप हमारी सहायता करो। पूछा, कौन आया है लंकेश, कौन किससे लड़ना है, आप इतने दुखी क्यों दिख रहे हो। बोला, दो बालक दशरथ के पुत्र वन से घूमते हुए आक्रमण किया है हमारी सेना, हमारा पुत्र भाई कुंभकर्ण सबका समाप्त कर दिया। तो बलि महाराज ने कहा, लंकेश आप जरा आइए तो हम थोड़ा आपको घुमाते हैं हमारे सूतल लोक में क्या क्या सुंदरता है, पीछे जाके दिखाते हैं, एक त्रिकोण बहुत सुंदर सोने का पर्वत पड़ा है। बोला, रावण इसको उठा सकते हो। उन्होंने कहा, मैंने हिमालय को हिला दिया था, इसको उठा लूंगा, उस पर्वत को उठाने का प्रयास किया, सोने का उठा नहीं तो रावण बड़ा थक गया और थोड़ा सा निराश हो गया। तो बलि महाराज कहते हैं, ये आपसे नहीं उठ रहा है क्या रावण। लंकेश बोले, महाराज बड़ा भारी पर्वत लग रहा है। बोले, पर्वत नहीं है ये, हमारे दादा हिरण्यकशिपु के कान का एक कुंडल है, ऐसे दो पहने हुए थे उसको, और ये भगवान जिसका आप राम कह रहे हैं लक्ष्मण ना, ये नरसिंह देव आए थे तो उसका पेट चीर फाड़ के आंतों की माला पहन दी थी, अब मैं आप कहते हैं मैं उससे युद्ध करूं, जाओ जल्दी यहां से वापस। तो ऐसे कान का कुंडल उठता नहीं है, और कहते हैं कि उससे युद्ध करना है तुमको। वापस आया है रावण युद्ध के लिए तैयार हो। राम रावण युद्ध भी कोई मेरे ख्याल में कितने दिन किसी ने काउंट किया है कि काफी दिन चला है। तो रावण राम जी तो नीचे खड़े होते थे, वो रथ के ऊपर चढ़ के आता है, एक दिन देखा बड़ा थका हुआ है। बोला, लंकेश आप थक गए हो, अब आप आराम करो, कल आ जाओ। राम जी को क्रोध नहीं आ रहा है, क्रोध नहीं आया तो मारे कैसे। एक दिन विभीषण के ऊपर, बोला ये सब विभीषण तुम्हारी वजह से है, विभीषण के ऊपर जब आक्रमण करना तब पहली बार राम जी क्रोध करके अपने पीछे विभीषण को पीछे कर लिया और स्वयं आगे सामने खड़े होके और अनुसंधान करने लगे। अब इंद्र को विचार आया कि देखो तो जब युद्ध बराबर का होना चाहिए, ये तो बड़ा अन्याय है, एक रथ के ऊपर और एक नीचे हमारे स्वामी खड़े हैं। इंद्र ने अपने रथ को भेजा, मालती अपने सारथी को भेजा, और ये जब रथ नीचे आया मालती के साथ तो राम जी को कहा आप चढ़िए, और राम जी अब रथ में आमने सामने युद्ध हो रहा है। उस युद्ध में मालती कहते हैं, महाराज आप सब जानते हैं, अब आप क्यों इतना विलंब कर रहे हैं, इसका उद्धार कीजिए। फिर आपको बीच में एक दिन बात कही थी, उस जो गर्दन काटे राम जी गर्दन वापस आ जाए, बाजू काटे तो वापस बाजू निकल आए। बड़ा आश्चर्य राम जी को, और रावण फिर हंसता रहे, वो गर्दन कटे गर्दन वापस, बाजू कटे बाजू, और ये तो ब्रह्मा जी का वरदान था। अब मालती कहते हैं, महाराज आप इतना इसकी माया से मोहित क्यों हो रहे हो, आपको मालूम है इसको हृदय में बाण मारना है। तब आपको कल बाण की बात कही थी, वो महाराज रघु का बाण जो ब्रह्मा जी ले गए थे वो हनुमान जाके लेके आया और उस बाण का अनुसंधान किया, और उस दिन कहा था कितने बाण, 10 सर के लिए, 20 बाजू के लिए और एक छाती के, 31 बाण का राम जी ने प्रहार किया है। तब रावण नीचे गिरा है और लंकेश के गिरते ही मंदोदरी रोने के लिए आई है, अब तो विभीषण को भी रोना आ रहा है। राम जी ने कहा, शत्रुता तब तक होती है जब तक जीवत है, अब इसका अंत्येष्टि क्रिया करो। और अंत्येष्टि क्रिया जैसे पूरी हो गई तो कहा, सीता को हनुमान समाचार दे के आओ कि राम जी की विजय हो गई है और लंका में रावण का विनाश हो गया है। हनुमान ने सीता को यह समाचार दिया है। सीता बड़ी प्रसन्न हो गई कि पुत्र अब तुमको क्या उपहार दूं, आपने मेरा जीवन की रक्षा कर ली है, बस तत्काल मैं रघुनाथ को देखना चाहती हूं, मेरे प्राणनाथ को। हनुमान कहता है माता ये सब राक्षसियां तुम्हारे को बहुत सताती थी, आज्ञा दो तो इनके नोच के बाल खींच लो। सीता कहती है बेटा राम के दूत अगर इस तरीके से व्यवहार करेंगे, इन्होंने किया बेचारे, इनका दोष थोड़ी था, जो रावण की तो नौकरानी थी उसने जो कहा इन्होंने किया, और हम वैसे ही इनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे ये अच्छा नहीं है। सीता जी ने कथा बता के हनुमान को कहा कि शेर किसी भालू के पीछे गया, भालू चढ़ के ऊपर चढ़ गया पेड़ पे, तो एक पेड़ पे ऊपर आदमी बैठा था, उसको कहा इस भालू को नीचे गिरा दो तुमको नहीं खाऊंगा, उसने धक्का दिया भालू जाग गया। तब भालू कहता है अरे तुमको धक्का दे रहा अब इसको खिलाओ मैं खाऊंगा। तो भालू ने कहा नहीं नहीं इसने धक्का दिया मैं थोड़ी इसको धक्का दूंगा, इसको मारने के बाद तुम मुझे भी मारोगे, ये तो काम है तुम्हारा, इसलिए जो इन्होंने किया ऐसे हम नहीं करेंगे। बेटा कुत्ता कोई काटता है तो आदमी कुत्ते को थोड़ी काटता है, ये तो बेचारी राक्षस है, इनके ऊपर हमारे को दया करनी चाहिए। और हनुमान जी कहता है ये तो जनक नंदनी आपका ही स्वभाव ऐसा है, धन्य है आपका करुणा और दया इनके ऊपर। और फिर हनुमान वापस लौट के आए हैं। इतनी देर में वो जो गिद्ध गया हुआ था कौन संपाति, वो बड़ी सेना गिद्धों के लिए आया, लगा तो आकाश सारा अच्छा ढक गया जैसे बादल आए। राम जी बोला ये तो युद्ध पूरा हो गया, ये रावण की माया दूसरी कहां से आ गई। तब तक आके संपाति कहता है महाराज हम रावण को विनाश करके सीता को लाके देंगे, और युद्ध के लिए मैं इतने देर से ये सब लोग लेके आया हूं। हमने कहा रावण का तो पहले ही अंत हो गया, लड़ाई तो समाप्त हो गई, लेकिन एक काम बचा है तुम्हारे लिए, अब लंका का राज तो हमने विभीषण को राज अभिषेक करना है, लेकिन इतने सारे राक्षस के सर और मुंडियां यहां गिरी पड़ी है, इसको सफाई करके समुद्र डालें तो समुद्र खराब हो जाएगा, इनकी सफाई कौन करेगा, आप अपने सारे ये गिद्ध को जो लाए हो ना इनको बोलो सब इनको उठा के दूर दूर ले जाएं, ये सब जगह साफ कर दो। अब तो संपाति ने कहा मुझे भी सेवा मिल गई, सारी युद्ध भूमि तत्काल सब गिद्धों ने उठा के साफ कर दी, और फिर अभिषेक हुआ विभीषण का। और तब विभीषण को भगवान ने कहा आप अब सीता को यहां लेकर आओ। अब विभीषण गया है, उसकी बेटी त्रिजटा ने और उसकी पत्नी ने सीता जी को बहुत सुंदर स्नान करा के वस्त्र आभूषण पहनाया है, वो तो कहती जैसे मैं हूं ऐसे तत्काल मुझे ले चलो। पालकी के अंदर सीता को लेके आ रहे हैं, चारों ओर सुरक्षित वाले लोग हैं, वानर लोग सीता को देखने के लिए आगे बढ़े हैं, तो वो लाठों से हटा रहे हैं, ये पता लगा राम जी को, तो कहा सीता को बोलो नीचे उतर के, सबके बीच से आया ये वानर जिन्होंने सीता के लिए मेरी सहायता की है, अपनी प्राणों की आहुति दी है, इनसे लज्जा करने की जरूरत नहीं है, और विवाह में लड़ाई में यज्ञ आदि में स्त्रियों का ऐसे आने जाने के ऊपर कोई शास्त्र प्रतिबंध नहीं डालता है, और उसके बाद भी हृदय के अंदर जो है लज्जा होती है बाहर दिखने के लिए नहीं है, सीता उतर के आई है, दोनों ओर से वानरों का दर्शन कर रहे हैं। और जैसे सीता राम जी के सामने पहुंची है और राम जी कहते हैं किशोरी सीता जनक नंदनी मैंने एक शुवा को कुल की मर्यादा के अनुसार आपके अपहर्ता को दंड देके और पराजित कर दिया है, अब एक साल तक आप रावण के बंदी रही है, अब आपको जहां चाहे वहां आप जाके निवास कीजिए। सीता की जमीन धरती से निकल गई कि ये क्या, कहीं भी मैं चली जाऊं अभी। सीता ने लक्ष्मण की ओर देखा और लक्ष्मण ने राम की ओर, राम बहुत गंभीर हो गए। तब सीता कहती है लक्ष्मण अब मेरे लिए और कोई जाने का रास्ता नहीं है, आप लकड़ी लाओ यहीं चिता बनाओ और मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। और इतनी देर में आकाश में शंकर जी ब्रह्मा जी आके सब देवता इंद्र आदि खड़े होके कहते हैं श्री राम ये आप क्या कर रहे हो, आप साक्षात भगवान विष्णु धरती के ऊपर हमारे कहने के ऊपर अवतार लिया है, ये जनक नंदनी सीता आपकी प्रियसी लक्ष्मी है। लेकिन राम जी उस वक्त तक शांत रहे जब तक अग्नि प्रज्वलित हुई और सीता उसमें प्रवेश हुई। यहां जो सीता अग्निदेव के पास असली धरोवर थी वो सीता वापस प्रकट हुई है, और माया सीता जो वेदवती थी वो फिर अपनी तपस्या करके रावण का अंत करके चली गई। अब ये जब सीता बाहर निकली है राम जी के वाम भाग में आई है, राम जी ने बड़े प्रेम से मुस्कुरा के खड़ा किया, बोला सीते अगर ऐसे ही मैं स्वीकार करता तो लोग मैं बात चलती, अब आज अग्नि की परीक्षा हो गई और देवता अब साक्षी हैं, और देवता कहते हैं हम साक्षी हैं सबके। वो सूर्य कहता है मैं दिन में साक्षी हूं, चंद्रमा कहता है मैं रात में साक्षी हूं, और सब कहते हैं देवता हम साक्षी हैं, हम कहते हैं कि ये पतिव्रता है और ये नित्य आपका ध्यान करती है। तब दशरथ महाराज प्रकट हुए आकाश में और कहते हैं सीते जो राम ने आपकी परीक्षा ली इसके लिए आप इसको क्षमा कर देना, और मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं राम जी का, जब अभिषेक होगा तभी मेरे को संतुष्टि होगी। और उस वक्त इंद्र ने कहा जब हम देवता आते हैं तो कोई वरदान देते हैं, अब राम जी आप कुछ वरदान मांग लीजिए। राम जी कहते हैं एक काम करो, ये वानर जो मेरे सारे पीछे खड़े थे और राक्षसों ने इनको मारा है ना, ये राक्षस तो मेरा दर्शन करते हुए मरे, इनका तो उद्धार हो गया, लेकिन ये वानर मेरे पीछे थे ना, इनको वापस जीवित कर दो। अमृत की वृष्टि हुई और सोए हुए वानर उठ के बैठ गए। बोला दूसरा वरदान, बोला जहां जहां मेरे वानर घूम रहे थे, जहां रहे वहां वन में फल फूल हो और पानी के झरने हो और इनको कहीं कोई कठिनाई ना हो, यहां से देवता ऊपर से विसर्जन हुए हैं। अब विभीषण कहता है आप आइए राज में थोड़ा विश्राम कीजिए। राम जी कहते हैं समय बहुत कम है, 14 साल में कुछ बाकी दिन बचे हैं, और एक घड़ी की का भी विलंब हो गया तो भरत प्राण त्याग देंगे। तो विभीषण कहता है महाराज ये मेरा पुष्पक विमान जो है आपका है, आप इसी में अब जाइए, यहां से वापस पैदल जाने की जरूरत नहीं है। और उस वक्त पुष्पक विमान का आह्वान किया, विभीषण ने बोला मैं भी चलता हूं। राज अभिषेक विभीषण का करा दिया और फिर उसके ऊपर सुग्रीव चढ़ाए, अंगद चढ़ाए, नल नील कुछ हनुमान ये सब पुष्पक विमान के ऊपर चढ़े हैं, और पुष्पक विमान आकाश में उड़ा है तो पहले ऊपर से भगवान श्री रामचंद्र सीता को दिखा रहे हैं, देखो ये सेतु वानरों ने तैयार की है, और फिर वो स्थान दिखाया, बोला यहां हमारे को ये किसकंदा है, यहां हमारे को ये सुग्रीव और हनुमान मिले थे, बोला किसकंदा में विमान को उतारा है और सुग्रीव की पत्नी रोमा को लिया है, और तारा को बाली की पत्नी अंगद की मां तारा को लिया है कि अकेली सीता है, 2-3 स्त्रियां साथ होनी चाहिए। अब ये विमान यहां से आकाश मार्ग से राम जी दिखाए, देखो ये सामने यहां कबंध राक्षस का वध किया, और यहां से हमको पता लगा ये वो जगह है जहां आपको जटायु आपकी रक्षा के लिए लड़ा था, ये पंचवटी जहां हम रहते थे, और ऐसे करके ये दिखाया ये चित्रकूट है, और ऐसे विमान को फिर वापस आके प्रयागराज में उतारा है। और रात को राम जी यहां रुके हैं ऋषि भारद्वाज के आश्रम में, और हनुमान को कहा है आप जाके भरत को नंदीग्राम में समाचार दो कि कल सुबह रघुनाथ पहुंचेंगे, क्योंकि उसको बहुत विलंब हो गई तो प्राण न त्याग दे, और एक हाव भाव देखना, अगर राज करने का भाव हो तो जल्दी आके मुझे बताना, तो हम उसके राज में कांटा नहीं बनेंगे। हनुमान जी पहुंचाए और हनुमान ने उतर के कहा है भरत को रघुनाथ लक्ष्मण के सहित कल आएंगे। अब तो भरत गले लगा के कहता है हनुमान आपने हमारे को जीवन दान दे दिया, मैं तो दिन क्या घंटे गिन रहा था, मिनट गिन रहा था, और एकदम उन्होंने कहा है कि शत्रुघ्न कल राम जी को यहां से बड़े शोभा के साथ अयोध्या में ले जाने का व्यवस्था करेंगे, और गुरुजनों को समाचार पहुंच गया है, और दूसरे दिन सुबह हुआ है। भरत कहता है आप वानर हो, आपकी बात सत्य है, अभी तक राम जी क्यों नहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतनी देर में आकाश में विमान पुष्पक दिखाई दिया है, और अधीर होके आगे दौड़ के विमान के उतरते ही भरत ने रामचंद्र के चरण को पकड़ लिया है, और रामचंद्र ने भरत को उठा के सीने से लगाया है, और फिर सुग्रीव को भरत ने गले से लगाया है, फिर लक्ष्मण से मिले हैं, और इस तरीके से जब राम जी वहां आके विराजे हैं तो अब यहां नंदी ग्राम के अंदर सब रथ तैयार होके आए हैं, गुरुजन आ गए हैं, और यहां से ये सारी यात्रा अयोध्या में आके पहुंची है। और जब यात्रा अयोध्या में आके पहुंची है तो अब दूसरे दिन बाकी सब राजा महाराजा आ गए हैं, राज अभिषेक की तैयारी होनी है, सुग्रीव ने वानरों को भेजा है सब जगह से जाके सब तीर्थों का जल लेके आओ, और राम जी का राज अभिषेक होने लगा, सब राजा महाराजा जनक आदि आए हुए हैं। और उस राज अभिषेक के समय राम जी कहते हैं सुग्रीव ये सब जो हमारी विजय हुई हमारे गुरुजनों की कृपा से हुई, और फिर गुरुजनों को और माताओं को कहते हैं कि देखो ये जो हमारी विजय हुई है सुग्रीव से, ये सुग्रीव जैसे हमारे सखाओं ने हमारी सहायता की है। अपना कुछ नहीं कह रहे हैं, एक तरफ अपने सखाओं को सौभाग्य दे रहे हैं, एक तरफ गुरुजनों की आशीर्वाद मान रहे हैं, केकई को प्रणाम किया है, कौशल्या के करना प्रणाम किया है, और राज अभिषेक के अंदर मंगल मंत्र जब कहे गए हैं, ऋषि सारे उनके कुल पुरोहित सब आ गए हैं, वशिष्ठ वामदेव आदि और इक्ष्वाकु कुल का जो ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ उनका जो मुकुट है वो राम जी के ऊपर छत्र को रखा है, वाम भाग में सीता को विराजमान किया है, और लक्ष्मण और हनुमान ये सारा ये बहुत भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, ये बड़ा अच्छा राज अभिषेक हुआ है। रामचंद्र जी वापस 11,000 साल तक रामचंद्र का राज हुआ, 10,000 साल उनका अपना राज था, 1,000 साल अभी और दशरथ को राज करना था, लेकिन क्योंकि दशरथ राम के वियोग में पहले ही प्राण त्याग दिए तो वो जो आखिरी वाला 1,000 साल था उस समय में, क्योंकि वो दशरथ की जगह पे राज कर रहे थे उस समय सीता जी का वाल्मीकि आश्रम भेजने का भाव आता है। उस एक आखिरी वो जो आखिरी वाला, और ये कथा कौन बता रहा है, पहले दिन आपको कहा था ये लव और कुश कथा बता रहे, राज अभिषेक की कथा तक बताया, फिर आगे का उत्तर रामायण नहीं बताया, और पूछा राम जी ने आप कौन हो, हम तो ऋषि वाल्मीकि के शिष्य हैं। तो इसके बाद राम जी के पास आए हुए जितने भी, फिर ऋषि सारे आए राम जी के पास, कल बात बताई थी, अगस्त ऋषि राम जी ने असुरों की उत्पत्ति इसका कल वर्णन किया, फिर पूछा कि ये हनुमान सुग्रीव के साथ था, फिर बाली से क्यों सुग्रीव डर रहा था, मैंने हनुमान का वीरता देखी है, तब हनुमान के प्रकट्य की कथा अगस्त ऋषि ने बताई कि हनुमान का प्रकट्य कैसे भगवान शंकर के अंश से शंकर जी की शक्ति को वायुदेव ले जाकर, एक अप्सरा अंजनी थी जो अप्सरा थी बृहस्पति की, जो किसी श्राप के कारण धरती के ऊपर आई थी और उस वक्त में केसरी नाम के एक वानर की पत्नी थी, उसके उदर में स्थापित किया, इसलिए हनुमान का एक नाम तो एक तो है वो रुद्र अवतार क्योंकि अंश रुद्र का है, एक वायु पुत्र है क्योंकि वायु ने लाके रखा, और एक केसरी नंदन है क्योंकि केसरी उस वक्त में वानर राज था, और अंजनी माता उसकी थी, और जन्म लेते ही आकाश में उड़ा है। मां से पूछा कि मैं खाऊं क्या, बोला बेटा वो देखो लाल लाल दिख रहा है सूर्य, ऐसा फल पका हुआ खाना, अंजनी को तो वापस उसी दिन जाना था, इतना ही शराब था, हनुमान ने कहा ऐसा और कहां देखूं, इसी को खाने को जा रहा हूं, वो तो उधर गया तो उस दिन ग्रहण लगना था सूर्य को, तो राहु ने देखा ये सही है, और कौन आया है जो राहु को खा रहा है, आज तो मेरे को ग्रहण लगना था, वो भागता हुआ इंद्र के पास गया, इंद्र ऐरावत के ऊपर आया तो हनुमान ने देखा ये सफेद फल अच्छा लग रहा है, वो तो इंद्र की तरह भागा, इंद्र को डर लगा, उसने वज्र लगाया, अभी तो नामकरण हुआ नहीं है, उसका जबड़ा टूट गया, हनुमान नीचे गिरा, वायुदेव ने गोद में बिठा दिया, अब वायु ने बहना बंद कर दिया, सब तकलीफ में सांस लेना बंद हो गया, ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने इंद्र वायुदेव के पुत्र के ऊपर अकारण आक्रमण किया है, उसको दंड, इसलिए आप सब चलो और वायुदेव को संतुष्ट करो उसके पुत्र को, अब सब लोग उस गुफा में आए हैं, ब्रह्मा जी ने आके करमंडल से जल छड़का है, अब जबड़ा टूटा हुआ है इसलिए उसका नाम हो गया हनुमान, ये जो जबड़ा टूटा है इसलिए उसका नाम हनुमान हो गया। वैसे जिसके जो कोई अपने मान के लिए प्रतिष्ठा न करे, सेवा के भाव में रहे, वो मान को हन कर दिया, मान का हनन कर दिया, अमानी हो गया, और तब सारे देवताओं ने वरदान दिया है हनुमान को, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं कहेगा, इंद्र ने कहा है मेरा वज्र कुछ नहीं करेगा, सूर्य ने कहा है कि मेरा तेज तुमको है बड़ा हो जाएगा, तेरे को शिक्षा दूंगा, यम ने कहा है मेरा कालदंड कुछ नहीं करेगा, तुम कुछ भी रूप बदल सकते हो, पंडित रहोगे और रोग कभी नहीं होगा, सब आशीर्वाद दिए। अब केसरी के घर में रोज इतना उधम मचाने लगा, एक ऋषि के घर के बाहर की तरफ एक शेर को, एक बार हंसने की बात मेरे को, मैं सुन रहा था, जब देखते हुए लंका में हनुमान गया तो रावण और मंदोदरी को सोया हुआ देखा तो उन दोनों की चुटियां बांध दी, उसको तंत्र आता था, और बोला ये तंत्र खोलने का रास्ता क्या है, बोला एक मंत्र पड़ेगा, पत्नी जब जोर से थप्पड़ लगेगी तो मंत्र खुलेगी, ये तंत्र से बांध दिया। अब जब रावण उठा बोला ये कौन कैसी दुरुस्त है, बांध कौन गया है, खोला खुले नहीं, बोला ये तो तंत्र है, वो भी तो पंडित था। बोला मंदोदरी ये तंत्र से बंधा है, अब मैं मंत्र पढ़ता हूं आप मेरे को थप्पड़ ना। बोला पतवरता हूं मैं आपको, थप्पड़ कैसे मारूं। बोला जल्दी कर अभी कोई नहीं है, और सब उठ गए तो भले सबके सामने पिटना पड़ेगा, और बोला आस्ते लगाओगी तो नहीं खुलेगा, अच्छी तरह से लगाना। और रावण तो मंत्र पढ़ने लगा, और रावण ने दे मारा एक मंदोदरी ने, तब गांठ खुल गई। हनुमान ने कहा पहले पत्नी से खा ले जूते, बाद में तुम्हारा देखभाल करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या कह रहे थे वो सब अगस्त में, तो वो हनुमान ऐसा काम करने लगा, एक ऋषि के बाहर एक शेर को और एक हाथी के साथ बांध के रख दिया। अब वो बेचारा उठ के सुबह सोच के लिए बाहर जाने लगा तो हाथी खड़ा है और शेर खड़ा है, जाए कहां से। बोला खिड़की से जाऊं वहां तो देखे तो एक रीछ को बांध के रखा है, और ये हनुमान का काम है। तो ये ऋषियों ने कहा हनुमान अब तुम्हारी शक्ति तेरे को याद नहीं आएगी जब तक कोई याद नहीं दिलाएगा। और ये बहुत बड़ा सब ऋषियों को परेशान कर रहा था, अब उसको भूल गया। पिताजी ने कहा तुम सूर्य देव के पास जाओ, कुछ पढ़ के आओ, एक साल तक वहां पढ़ने गया, इसलिए हनुमान को ये सब बातें भूली हुई थी अपनी शक्ति। इसलिए वो सुग्रीव के साथ रहते हुए भी बाली से क्यों नहीं कर सका, क्योंकि उसको सब कुछ शराब के कारण भूला हुआ था। जब जामवत ने याद किया तब उसने अपना प्रकाश दिखाया। इसके बाद सबको विदा किया है, बड़ा भेंट दे के वानरों को। सुग्रीव को कहा आप जाके आप किष्कंधा का राज करो, विभीषण आप जाके लंका का राज करो। हनुमान कहता है सुग्रीव को अब हम आपके पास साथ नहीं जाएंगे। राम जी आपने एक पद दे दिया सुग्रीव को किष्कंधा का राज, आपने एक पद दे दिया विभीषण को लंका का राज, मेरे को दो पद चाहिए। अरे तू तो अच्छा सेवक था, कुछ मांगता नहीं था, आज क्या मांग रहा है, दो पद क्या चाहिए। बोला आपके दोनों चरण कमल है, मैं यही रहूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं। और फिर सबको उपहार दे के विदा किया है। और फिर रामराज की बहुत इतनी प्रशंसा है, कोई बीमार नहीं, कोई बूढ़ा नहीं, किसी का बेटा नहीं मरता है, स्त्री कभी विधवा नहीं होती है, और ऐसा बहुत सुंदर रामराज का वर्णन है। और यहाँ राम कथा को विराम देते हैं, उत्तर रामायण की कथाएं आप घर जाके पढ़ना। हरे कृष्ण सीताराम लक्ष्मण।